بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وازرعت. سوالات کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو تو ذہن میں بار بار پہلے ہی سے اس سے متعلق مختلف سوالات آنے لگتے ہیں. کیا انسان کو لاشعوری طور پر اس صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کے دو طرح سے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک تو روحانی طور پر ہے, روحانیت میں جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ روحانیت یکلخت حاصل نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ بڑا گریجول پروسیس ہے اور بڑے غیر محسوس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور غیر محسوس طریقے ہی سے بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. کہیں کہیں انسان کو اس وقت اندازہ ہونے لگتا ہے جب اسے تصرفات حاصل ہوتی ہیں یا اسے کشف حاصل ہونے لگتا ہے. یہاں پہ اسی جگہ پہلے شاید ایک دو نشستوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ابتدا جو ہوتی ہے وہ خیال سے ہوتی ہے. وہ بڑی ابتدائی شکل ہے, اطلاع آنے کے کئی ایک ذرائع ہیں. وہی تو ختم ہو چکی, وہی اور ہوتی بھی وہ صرف پیغمبروں پر ہے. ولی اللہ کا کسی کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو, وہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. وہ مخصوص ہے پیغمبروں کے لیے اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد سے ختم ہو چکا. تو اس ذریعے کو تو رول آؤٹ کر دیتے ہیں, ڈسکس نہیں کرتے. وہ ذرائع اطلاعات کے جو اولیاء کرام پر ہوتے ہیں تو اس کی ابتدا خیال سے ہوتی ہے کہ ایک ہلکا سا خیال ذہن میں آئے گا کہ یہ کام ایسے نہ ہو جائے. اب یہ صورت ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کی سکس سینس ویسے ہی ڈیولپ ہوئی ہوتی پہلے سے ہی, اور کچھ وہ روحانیت پہ جب چلتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اسی کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے اور کوئی آدمی اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ابتدا میں عام طور پہ یہ واقعہ پیش آتا رہے گا کہ کوئی واقعہ ہونے سے بہت دیر پہلے ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि ऐसा ना हो जाए कहीं. तो साइंटिफिकली इसमें, बल्कि साइकोलॉजिकली कहिए, साइकोलॉजी कहती है कि हर शख्स के अंदर सिक्स सेंस होती है. कुछ लोगों के अंदर वो सिक्स सेंस कुदरती तौर पर डेवलप हुई भी होती है और आने वाले वाकयात जो हैं उसके बारे में उनको ये इस तरह की इंडिकेशंस मिलने लगती हैं. कुछ लोगों में बहुत डेवलप होती है तो क्लियर कट उनको ख्याल आ जाता है. ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनके जरिए से हम अपने सिक्स सेंस को डेवलप कर सकते हैं. रूहानियत में तो ये आगे बढ़ के ऐसे सकश तक जा सकती है बात, लेकिन साइकोलॉजी इसको शायद सिक्स सेंस की महदूद रखती है. इनका एक सवाल ये है कि जिन घरों में जिन्नात मुकीम हूं उन घरों में कुछ लोग जाकर कभी कयाम करें तो सोती जागती हालत में उनके पास वो जिन्नात अपना तारुफ कराने आ जाती हैं, और उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? जिन्नात के नजदीक तो सबसे बड़ा जिन खुद इंसान है और वो जिन्नात उससे खौफजदा ही रहते हैं, तो इंसानों के करीब ये आते नहीं है. लेकिन अगर किसी के साथ पास आ गए वो तारुफ कराने, तो याद रखिए कि तारुफ तो अपने ही जैसे लोगों के साथ किया जाता है. तो अगर उनको ये इस्तेमाल होने लगे कि यहां आके जो रहा है वो हमसे भी बड़ा जिन है, तो तारुफ कराने तो आ जाएंगे. भाई जिसने इंसान को सजदा किया है और इंसान को रब ताला ने अशरफुल मखलूकात डिक्लेयर कर दिया, तो सारी मखलूक तो उससे नीचे है. तो जिन्नात आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? और मेरा तजर्बा तो यह है कि जिन्नात भागते हैं इंसान से बड़ी दूर. करीब नहीं आते इंसान के, लेकिन अगर आ ही गया तो वेलकम कीजिए उसको, उससे क्या होगा? डरने की चीज ही नहीं है वो. अगला इनका सवाल ये है कि मुर्शद साहब ख्वाब में नजर आते हों लेकिन कोई तलकीन ना करते हों, खामोश रहते हों, तो कहीं ये उनकी नाराजगी या किसी मामले में लताल्लुक की अलामत तो नहीं है, या फिर ये मुरीद की बातनी कसावत की वजह से होता है? होता ये है कि इसके कई एक रीजंस हो सकती हैं. एक रीजन तो ये हो सकता है कि उनकी तालीमात को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो एक पोलाइट रिमाइंडर है कि आपके ख्वाब में आके वो खामोश खड़े हैं, तो आपको एहसास हो जाए कि मैं इनकी तालीमात को इग्नोर कर रहा हूं, मैं उस पर अमल नहीं कर रहा। एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो आप अजीज हूं अपने मुर्शिद को, वो शफकत के इजहार के लिए तो आ जाए, मुलाकात हो जाए आपसे, लेकिन अभी कुछ आपको फर्दर इल्म देने का वक्त नहीं आया, तो कुछ बताएंगे नहीं, आपसे बोलेंगे नहीं कुछ भी। तो आमतौर पर ये दो रीजन होते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि जो आपने लिखा कि नाराजगी है कि किसी वजह से उन्हें दुख पहुंचा है, तो वो ख्वाब में आपको नजर आते हैं तो बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे, उसका तो अंदाजा इंसान को हो जाता है कि क्या है। अगर मैं अपने मुर्शिद साहब की तालीम को इग्नोर करके किसी चीज के बारे में किसी और राह पे चल रहा हूं, नफ्स की बात मान रहा हूं, तो ये अगर किस्सा होगा तो फौरी तौर पर मेरा जहन उधर जाएगा कि मैंने फला जगह बजाय मुर्शिद की बात मानने के मैंने नफ्स की बात मानी है, इसलिए वो मुझे एक पोलाइट रिमाइंडर आ गया, तो मैं रुक जाऊंगा उससे। वो अपने हालात से आदमी को अंदाजा हो जाया करता है। इनका अगला सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में क्या कोई शेख अपने किसी नालायक नाकारा मुरीद के लिए महज उसके जज्बाए शौक की बिना पर सिफारिश कर सकता है? देखिए, अक्सर बेशतर मैं एक अर्ज करता हूं कि जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक की बात है, अगर कोई वाकई ही साहिब इल्म है तो वो मारे अदब के वहां चुप रहता है। जैसे रूहानियत में एक चीज सुनते हैं, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फनाफिल अल्लाह, तो वो जो फनाफिल शेख है उस मकाम से ही गुजर कर आदमी उस मकाम तक जाता है जहां उसे ये एजाज हासिल हो जाए। तो वो तो अदब का बड़ा खूगर हो गया होता है उस वक्त तक कि मुर्शिद की खिदमत में भी जब आदमी पेश होता है तो वहां भी जुबान बंद रहती है। आदमी मुर्शिद के सामने जुबान नहीं खोलता है। यहां एक छोटा सा फर्क मैं अर्ज कर दूं कि हम मुर्शिद और पीर साहब में कोई फर्क कर नहीं पाते। पीर साहब के यहां तो आदमी जाता ही दुआएं कराने हैं। मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होता आदमी इल्म हासिल करने के लिए, तरबियत के लिए, कि मुर्शिद उसको तालीम भी दे दें और उसकी तरबियत भी कर दें कि वो रब के कि दोस्ती का सजावार हो सके। तो वहां मुर्शिद के खिदमत में तो जुबान खुलती ही नहीं है। एक बार सामने आ जाए मुर्शिद, तो आदमी अदब की वजह से जुबान नहीं खोलता कभी। जितना वो सवाल कर ले उसका मुख्तसर तरीन जवाब हाँ ना में दे के फिर खामोश हो जाता है इंसान। क्योंकि वहां से कुछ हासिल करने के लिए जरूरी है कि हमारी आंखें और कान खुले रहें लेकिन जुबान बंद रहे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे वहां। तो ये इल्म के हसूल का एक लंबा प्रोसेस है जिससे गुजरता है, तो इंसान की सेकंड नेचर बन जाती है कि वो बादब हो जाए। तो वहां का अदब उसके सेकंड नेचर बन गया है, तो ये महफिल तो बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही दुनिया की सबसे आला तरीन महफिल है जहां अदब बुनियादी चीज है। तो ये किसकी जरूरत के वो उस महफिल में बैठा हो और सिफारिश के लिए मुंह खोल ले। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपना मुतवाज़ो और मरबत वाले हया वाले हैं, तो उन्हें इस बात का खुद लिहाज रहता है कि इस आदमी के आगे ये लोग हैं, इसके पास आते हैं, तो वो खुद ब खुद ही चूंकि रहमतुल्लिल आलमीन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही रहमत बरसाते रहती हैं। तो वो सिफारिश की जरूरत नहीं, वो ताल्लुक ही दर हकीकत एक सिफारिश बन जाता है, वो ताल्लुक रहे। लेकिन ये है कि अदब का ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए कि हम ऐसी जगह पर बड़े मुअद्दब और खामोश रहे। इवन मुर्शिद के पास भी जब जाएं तो खामोशी इनका। अगला सवाल ये है कि कभी कभी जब मुरीद अपने शेख से तमन्ना के बावजूद कोई सवाल न कर पाए तो शेख जवाब में उस सवाल का जवाब ख्वाब में उस सवाल का जवाब दे देते हैं, क्या वो जवाब बादजा मुर्शिद साहब से कंफर्म करने की जरूरत है? देखिए, एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ, उसका जवाब आपको ख्वाब में मिल गया, तो वो बजाते खुद ही कंफर्मेशन है, उसकी कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कुछ ख्वाब देखते हुए यकीन होता है कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है, ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं कहीं किसी स्टेज पर आलम बरज़ख में या हशर के बाद हमें यूं तो नहीं लगेगा कि ये सब महज एक ख्वाब था? वो तो अटल हकीकतें हैं, वहां ये चीज नहीं होती, वहां तो एक ही पछतावा रहता है कि कहीं मुझे जिंदगी में उस वक्त होश आ जाता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो शायद मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात और सुन्नत के मुताबिक गुजार लेता। जलवाए हक हो या जलवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये یہ بقدر ظرف نصیب ہوتا ہے، یہ بقدر عطا. یہ خالصتاً رحمت کی بات ہے کہ رب تعالیٰ جس پر یہ رحمت کر دے، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظریں عنایت فرما دیں، وہ وہیں کے معاملات ہیں، اس میں آدمی کا استحقاق کہیں نہیں ہے. تو یہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بقدر عطا. میں اصل میں اس ورڈ پر اس لیے نہیں پوری طرح سے بات کہہ رہا تھا، بقدر کہنا شاید گستاخی ہو جائے، کیونکہ وہاں سخاوت دونوں ہی جگہوں پر انمیشڈ ہے، اللہ کے یہاں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی. تو اس میں حساب جوڑنا وہ درست نہیں ہے. تو یہ اس کے میں تو اس طرح سے زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ معاملہ خالصتاً رب کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کا ہے کہ کسی پر بھی ہو جائے، استحقاق تو کوئی ہے نہیں. کم از کم میں تو نہیں سمجھتا کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں اس کا. وہ آدمی کے استحقاق کی بات نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے ولی اللہ کسی مرید کو ہاتھ پکڑ کر اندرون لاہور کی پرپیچ گلیوں سے نکال کر موٹر وے تک پہنچا دیتی ہیں اور آگے کا راستہ سمجھا دیتی ہیں، لیکن اگر مرید ایسا نالائق ہو کہ مرشد کی انگلی پکڑے بغیر چلنے کی سکت ہی نہ اپنے اندر پاتا ہو، یا ایٹ لیسٹ ہر مرحلے مشکل مرحلے میں مرشد کی توجہ نظر کرم اور پریزنس کا طالب ہو، تو ایسا کیا ایسا مرید کبھی روحانیت کی راہ پر آگے نہیں بڑھ پاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام ولی اللہ نہیں بلکہ مرشد کرتے ہیں. اولیاء کرام تو بے پناہ ہوتے ہیں، جیسے جو لوئسٹ درجہ ہے ولایت کا اخیار یا عمران، وہی 40,000 ہیں دنیا میں. اس کے بعد درجہ بہ درجہ اوپر جاتے رہتے معاملات. تو سبھی تو آپ کو راستہ نہیں دکھاتا ہے. تعلیم دینا اور تربیت دینا یہ تو مرشد کرتے ہیں، اور مرشد ہر حال میں پابند ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے، گورن ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز. تو کسی مرید کے لیے یا کسی شاگرد کے لیے دل میں خواہ کتنی محبت کیوں نہ ہو یا اس کے برعکس کوئی جذبہ، وہ اصول کو وائلیٹ نہیں کرتے کبھی. تو روحانیت میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ تربیت کر دی، بنیادی علم دے دیا، فاؤنڈیشنز تیار کر دی مرشد نے جس پر روحانیت کی بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. تو پھر انہوں نے اپنے اس شاگرد کا حصہ اسے دیا. اب یہ उस शागिर्द पर मुनहसर है कि वो कितनी मेहनत करता है उस पर। ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्डिंग बनाते हुए जो मेसन है राज, वो दीवार बना रहा है तो दीवार उसकी अपनी हाइट से जब ऊपर पहुंचती है तो वहां पर वो स्कैफोल्डिंग लगाता है। स्कैफोल्डिंग इतनी मजबूत और इतनी सिक्योर होती है कि उस पर मूवमेंट होती रहे, मजदूर ईंटें लेके चढ़े, ईंटें वहां रख दें, वो स्कैफोल्डिंग गिरती नहीं है और उस पर बैठ के इत्मीनान से राज दीवार बनाता रहता है। अगर कोई राज बजाय स्कैफोल्डिंग वहां लगाने के सिर्फ सीढ़ी लगाए और उसके सहारे वो दीवार बनाने लगे तो वो गिरेगा जरूर, नुकसान जरूर करेगा। तो जो मुर्शद ने पढ़ने को दिया है आपको कि ये तुम अल्लाह को इस इन नामों से याद करो, इस वक्त पर करो, इतनी तादाद में करो, वो तो एक पहलू है छोटा, लेकिन जो आपकी तरबियत की है मुर्शद ने वो तरबियत यह है कि आप सुन्नत पे अमल कीजिए। और वो सुन्नत पर अमल करने को जब कहते हैं तो उनसे मुराद उनकी ये नहीं होती कि हम सिलेक्टिव हों कि इस चीज में तो सुन्नत पे अमल कर लिया बाकी भूल गए। वो सुन्नत पे पूरी तरह अमल पैरा होता है। उसके साथ जब वो रियाजत करता है तो फिर फल पाता है। हम लोग आमतौर पर ये भूल जाते हैं कि हमें सुन्नत पर अमल करना है और जिंदगी के तमाम शोबों में, एक नहीं सभी जगहों पर, तो वो फिर नताइज वो नहीं निकलते जो हम हासिल करना चाहते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम मुर्शिद को बुरा भला कहते हैं कि मैंने 35 साल यहां डबो दिए, मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो असल में कोताही वहां होती है क्योंकि बगैर सुन्नत पे अमल किए कभी नताइज नहीं हासिल होंगे। ये याद रखिएगा, ये सुन्नत पर अमल करना बड़ा जरूरी है और जिंदगी के तमाम शोबों में। इसी तरह मुझे अगर पढ़ने को दिया मुर्शिद साहब ने तो मेरी दुनियावी मसरूफियात आड़े आ गई। फैमिली पूरी कह रही कि जी हम चलें फिल्म पे चलते हैं। मेरा अपना भी दिल चाह रहा फिल्म पर जाने को, लेकिन टाइम है दरमियान में मेरा जिक्र का, तो मैं मजबूर हो गया कि चलिए आके पढ़ लूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा। और ये टेस्ट आते जरूर हैं। एन जो इबादत का वक्त है उस वक्त ऐसे मेहमान आ जाएंगे जिनको आप इनकार नहीं कर सकते, या जिनको ये नहीं कह सकते आप फैमिली के साथ बैठिए मैं थोड़ी देर में आता हूं, वहां फंस जाता आदमी। और ये टेस्ट आते जरूर हैं और आते ही रहते हैं। फिर इनका एक सवाल है कि अल्लाह ने हर इंसान को किसी खास मकसद के लिए तख्लीक किया है, हर इंसान अपनी जिंदगी का वो खास मकसद कैसे जान और पहचान सकता है? भाई मैं तो इंसान की तख्लीक का एक ही मकसद जानता हूं, और फ्याम में अगर बात करूं तो कि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और यहां कई बार इस मौजू पे बात हुई कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई, उसी ज़मन में ये जिक्र भी हुआ कि इसका मकसद क्या था। तो इबादत जो है वो उसको अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ से लफ्ज डिराइव हुआ, कहाँ से निकला, तो अबद और अबद से बंदगी असल में है। और बंदगी सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है कि हम रब ताला की बताई हुई इबादत करते रहे, बल्कि बंदगी ये है कि हम रब के तमाम अहकाम की दिलो जान से पाबंदी करें। वही अगर हम कर लें तो बड़ी बात है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पर जोर दें कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल लें, बाकी इंशाल्लाह आइंदा इतवार बस शर्त जिंदगी। अस्सलामु अलैकुम।